ओम शांति। आज अगर हम वर्तमान समय पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि हर कोई अपने जीवन में इस समस्या को अनुभव करता है। जैसे बहन पूछ रही थी आपसे कि यहाँ तक कि बच्चों को भी तनाव होता है, और हमारी स्थिति ये है कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के न होने पर। कि अगर तनाव नहीं है तो हमें लगता है क्या हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कर रहे हैं माना टेंशन तो होना ही है। और बचपन जिसे खेलने मौज करने की उम्र माना जाता था, आज तनाव उसमें भी प्रवेश कर गया है। हमारे यहाँ बहुत से विंग्स बने हुए हैं, आपने सुना है, अनेक व्यवसायों की सेवा के लिए अलग अलग विंग्स बने हुए हैं। तो उसमें एक मेडिकल विंग है जो लोगों को स्वास्थ्य की शिक्षा देने के लिए अनेक कार्यक्रम करते हैं। तो ऐसे ही एक शहर में स्वास्थ्य मेला लगाया गया था और उसमें बहुत सारे स्टॉल थे। एक माता पिता अपने बेटे को लेकर के वो मेला देख रहे थे और एक स्टॉल था उसमें जहाँ कहा गया था कि यहाँ आप अपनी बुराई का दान करें। तो बुराई का दान करने का अर्थ था अगर कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है, उसका दान करना है। तो लेकिन जब माँ बाप उस स्टॉल पर पहुंचे तो उनका बेटा बहुत चॉकलेट खाता था, तो डॉक्टर ने मना किया था, उसके दांत, एक दांत सड़ रहा था, तो लेकिन वो मानता नहीं था। तो माँ को ये बहुत अच्छा अवसर लगा और उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुम अपनी चॉकलेट यहाँ दान कर दो। तो वो बेटे ने कहा माँ मुझे सोचने दो मुझे क्या दान करना है। फिर एक मिनट बाद कहता है मैं अपनी पढ़ाई यहाँ दान कर दूं, मुझे पढ़ाई से बहुत टेंशन होती। तो हम देखते हैं आज पढ़ाई में एडमिशन से लेकर कैरियर के हर मोड़ पर बच्चों को टेंशन होता है, और बच्चों को टेंशन के साथ साथ माँ बाप को भी होता है। अब टेंशन पास होने का नहीं है, टेंशन 90% से ऊपर लाने का है कि उनके 90% से ऊपर मार्क्स हर एग्जाम में आने चाहिए। तो कई बार जब बच्चों के एग्जाम्स चलते हैं तो देखने में आता है कि माता पिता को उनसे ज्यादा टेंशन हो रही होती है। खैर, कहा 18वीं सदी ज्ञान में उन्नति की सदी थी और 19वीं सदी को आविष्कारों की सदी कहा गया। बहुत विज्ञान ने नए नए सुख सुविधा के साधन दिए और इसीलिए जो 20वीं सदी आई वो तो सुख की सदी होनी चाहिए थी, क्योंकि इतने सुख के साधन मिले हैं तो कौन सी सदी होनी चाहिए थी, ये दुनिया स्वर्ग बन जानी चाहिए थी, ऐसा ही हम कहेंगे। लेकिन हुआ क्या, 20वीं सदी को कहा गया एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और वर्तमान में हम 21वीं सदी में हैं। और मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर यही हमारी लाइफस्टाइल रही तो ये 21वीं सदी कौन सी सदी होगी, एज ऑफ पैनिक एंड डिप्रेशन हो जाएगी। आज डिप्रेशन के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, अकेले भारत में करोड़ों लोग डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, पूरे विश्व की बात तो छोड़ो। लेकिन यदि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन ले आते हैं तो ये सदी शांति की सदी भी हो सकती है। तो हम कौन सी सदी में जीना चाहेंगे, शांति की सदी में, तो फिर हमें क्या करना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। तो 20वीं सदी में ही बहुत अध्ययन हुए तनाव के ऊपर, साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इसके ऊपर काफी कार्य किया, और डॉक्टर हैंसले विशेष रूप से उन्होंने तनाव को परिभाषित किया, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स अपॉन कोपिंग एबिलिटी। तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज्यादा हैं, यानी समस्याएं ज्यादा हैं, परिस्थितियों की मांग ज्यादा है, लेकिन उसकी तुलना में यदि हमारी सामर्थ्य कम है, हमारी आंतरिक शक्ति कम है, तो जो हम महसूस करते हैं It's a kind of pain which comes to tell me there's something I need to change. एक प्रकार का दर्द है जो मुझे ये संदेश देता है कि मुझे कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है और उस परिवर्तन को लाने के लिए हमें कुछ नया सीखना होगा. और आज प्रेशर्स हमारे ऊपर चारों तरफ से आते हैं. भूतकाल में भी जीवन में कुछ घटनाएं घटी होती हैं जो वर्तमान में हमें तनाव महसूस कराती हैं, और भविष्य की भी चिंता हर एक को होती है. नौकरी से लेकर हो सकती है, धन को लेकर हो सकती है, बच्चों के शादी ब्याह को लेकर हो सकती है, कोई बीमारी को लेकर के हो सकती है. कोई भी प्रकार की भविष्य की चिंता भी वर्तमान में तनाव पैदा करती है, और वर्तमान की अपनी समस्याएं होती हैं. और इस तरह से कुल मिलाकर ये प्रेशर्स अगर ज्यादा हैं तो हम तनाव में रहने लगते हैं. और उन्होंने ये भी बताया कि जब तनाव की स्थिति में हम होते हैं तब हमारे शरीर में अनेक केमिकल्स बनते हैं, और ये केमिकल्स हानिकारक हैं, स्लो पॉइजन का काम करते और धीरे धीरे हमारे अंगों में रोग पैदा होने लगते हैं. येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है जिसमें विद्यार्थियों के ऊपर एक प्रयोग किया गया. उन्हें उनके व्यक्तित्व के अनुसार दो ग्रुप्स में बांटा गया. पहले ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते थे, यानी उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, जल्दी गुस्से में आ जाना, बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर, मन को शांत नहीं रख पाते थे. दूसरे ग्रुप में उन विद्यार्थियों को लिया गया जो उसके अपोजिट स्वभाव के थे. अपोजिट स्वभाव यानी बहुत शांत स्वभाव के थे, धैर्य रख सकते थे और अपने मन को भी शांत रख सकते थे. और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई तो उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी. तो देखा गया कि दोनों ही ग्रुप का स्वास्थ्य सामान्य था, लेकिन क्योंकि एक अध्ययन था तो हर 10 साल के बाद उनको हेल्थ चेकअप के लिए बुलाया जाता था. तो ये देखा गया कि 50 वर्ष की उम्र तक आते आते जो पहले ग्रुप वाले विद्यार्थी थे, जो अब विद्यार्थी नहीं वयस्क थे, उनमें दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना अधिक बीमारियां हो चुकी थी, जिन्हें हम साइकोसोमैटिक डिजीज कहेंगे, जिसके बारे में आपने सुना है. किसी को हार्ट की बीमारी हो चुकी थी, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को डायबिटीज थी, ऐसे कोई ना कोई बीमारी थी 5 गुना ज्यादा दूसरे ग्रुप की तुलना में. और इसीलिए उनके मृत्यु की संभावना भी 5 गुना ज्यादा थी. तो यही कारण है कि हमें अपने तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए. आप देख रहे हैं यहाँ, जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है. सबसे ज्यादा बुरा असर हमारे हृदय पर आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और यदि कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं, आजकल कम उम्र में ही ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, तो यदि वो ब्लॉकेज 70% से ज्यादा है और तनाव की स्थिति में एड्रेनलिन बनता है जो हृदय की धमनियों को सिकोड़ देता है, तो उससे उसमें ब्लड फ्लो कम होता है, हृदय को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो ये स्थिति एंजाइना को जन्म दे देती है. एंजाइना अर्थात हार्ट के कारण जो सीने में दर्द होता है उसे एंजाइना कहते हैं, और कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका असर आता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि एसिड ज्यादा बनता है, उससे अल्सर हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है. नर्वस सिस्टम पर असर आता है, हेडेक होता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, थके रहना, जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द होना. फिर मस्तिष्क की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, यानी हमारी एकाग्रता कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कम होती है, निर्णय शक्ति पर असर आता है, और अगर लंबे समय तक व्यक्ति तनाव में रहता है तो वो डिप्रेशन में जा सकता है. लोग तनाव कम करने के लिए कई बार व्यसनों का सहारा लेते हैं, हम सब जानते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या तंबाकू चबाने वाला पान मसाले के रूप में, किसी भी रूप में आता है उसे लेते हैं, तो उससे तनाव कम कितना होता है वो अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य पर और बुरा असर होता है। डायबिटीज, आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमैटिक डिजीजेस हैं। तनाव के कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उसकी वजह से इन्फेक्शंस भी होते हैं। अब ये सभी बीमारियां सबको नहीं होती हैं, लेकिन जिसका जो सेंसिटिव सिस्टम होता है, यानी हेरिडिटरी से हमारा कोई ना कोई सिस्टम कमजोर होता है, माता पिता को अगर हार्ट की बीमारी है तो बच्चों में भी हार्ट की बीमारी ज्यादा होने की संभावना होती है। अगर माता पिता को डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है तो वही बीमारी बच्चों में होने की भी संभावना होती है। तो रोग के लक्षण जो प्रकट होते हैं वो उसी रूप में होते हैं। तो किसी को हार्ट की बीमारी के रूप में, किसी को पाचन तंत्र की बीमारी के रूप में, तो किसी को नर्वस सिस्टम की बीमारी के रूप में वो हो सकता है। सभी को ये सब लक्षण होंगे ये आवश्यक नहीं है। तो आप सभी अनुभवी हैं अपने जीवन में कि हमें तनाव कब होता है, किन परिस्थितियों में हम तनाव का अनुभव करते हैं, तो पहले आपसे थोड़ा शेयर करना चाहेंगे। फैमिली लाइफ या आपकी वर्क प्लेस की लाइफ या आपका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, हमारा व्यक्तित्व भी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी तनाव में आ जाते हैं, तो ऐसी कौन सी स्थिति आप महसूस करते हैं जब आप तनाव में आ जाते हैं, कोई भी बता सकते हैं, परिवार में है या कार्य क्षेत्र में है, बोलिए, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फैमिली लाइफ में विचार नहीं मिलते हैं, या कोई हमारी बात नहीं सुनता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या कहेंगे अभी तो हम यहाँ शांति वन में, मनमोहिनी वन में बैठे हैं, इस वक्त तो हम बिल्कुल तनाव मुक्त हैं, हैं या नहीं है, लेकिन वापस जाएंगे अपने स्थानों पर, फिर वही समस्याएं, वही रोज की बातें जो तनाव पैदा कर सकती हैं। हाँ जी बोलिए। जनरेशन गैप, एक शब्द में अगर हम इस बात को बोलें तो जनरेशन गैप इतना फास्ट है, आज हर 10 साल में चीजें एकदम बदल जाती हैं, तो पुरानी पीढ़ी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है। नई पीढ़ी तो पैदा ही उस जमाने में हुई है, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है उसके लिए एडजस्टमेंट थोड़ा मुश्किल होता है। बराबर है? और वही जनरेशन गैप वाली बात है। अच्छा, और बोलिए जी। फ्यूचर की चिंता, बिल्कुल बराबर, वो तो टेंशन पैदा करती है जी। बिजनेस एंड कैरियर में, मतलब वर्क प्लेस पर भी कई अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो तनाव पैदा करते हैं, और बहने तो लगता है बिल्कुल तनाव मुक्त है। हाँ बोलिए। बिल्कुल, हाँ, अपेक्षाओं से, हाँ आप सुन रहे हैं, हाँ बराबर है। हाँ बिल्कुल, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो तनाव होता है। और कोई शेयर करना चाहेंगे? मोटा अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक से तनाव होता है, अच्छी बात है। और सुनाइए, मजेदार बातें सुना रहे हैं आप लोग। हाँ जी, हाँ, बीती हुई बातों की याद, वो तो हमने बताया आपको। अच्छा, अभी इस पर भी बहुत स्टडी हुई है, हम बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, हर एक के अपने अपने अनुभव होते हैं। तो होम्स एंड राही अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवन में घटने वाली आम घटनाओं का अध्ययन किया, रोज की बातें हैं जो हम कह रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो घटना हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है वो तनाव पैदा कर सकती है। फिर वो चाहे खुशी की बात ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो तनाव भी अनुभव हो सकता है। तो सबसे ज्यादा मार्क्स थे उन्होंने डेथ इन द फैमिली, अगर परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और खासकर अगर जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, और यदि वो असमय मृत्यु हो, पति हो या पत्नी हो जो भी, अगर वो असमय कोई दुर्घटना में मृत्यु होती है तो वो बहुत ज्यादा तनाव पैदा करती है। डाइवोर्स एंड सेपरेशन, पति पत्नी में अहम का टकराव होता है, दोनों साथ नहीं रह सकते, उनके विचार नहीं मिलते हैं, अलग रहने लगते हैं। आजकल सेपरेशन बहुत बढ़ता जा रहा है सोसाइटी में, और फिर अगर स्थिति तलाक तक पहुंचती है तो ये एक परिवार के लिए नहीं, दो परिवारों के लिए बहुत तनावपूर्ण स्थिति होती है। फिर मैरिज वैसे खुशी का अवसर है, लेकिन इसमें भी तनाव होता है। हम आपको एक जोक जैसा ही है, मतलब एक घटना सुनाना चाहेंगे कि एक बार एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीदा। उस जमाने में 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती थी, और भाग्य से उनकी वो लॉटरी खुल गई, लेकिन ये समाचार उनकी पत्नी को मिला। तो पत्नी ने सोचा कि मेरे पति हार्ट पेशेंट हैं, मुझे सीधा नहीं बताना चाहिए, तो अपने फैमिली डॉक्टर से उन्होंने बात की। फैमिली डॉक्टर को पूछा, मुझे पहले ही हंसी आ रही, फैमिली डॉक्टर को पूछा तो फैमिली डॉक्टर ने कहा कि आप उनको मेरे पास भेज दो, मैं समझा दूंगा। तो गए फैमिली डॉक्टर के पास, तो उन्होंने पहले समाचार की बात की, कुछ हेल्थ की बात की, और फिर कहा कि अगर आपको 10 लाख की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे। तो बोला डॉक्टर, अगर 10 लाख मिलेंगे तो मैं एक कार ले लूंगा, मुझे कार की जरूरत है। फिर डॉक्टर ने कहा, अगर आपको 50 लाख मिलेंगे तो क्या करोगे। कहा, 50 लाख अगर लॉटरी में मिलते हैं तो फिर मैं एक घर ले लूंगा, मुझे घर की भी जरूरत है। फिर डॉक्टर ने कहा, अच्छा आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप क्या करोगे। तो कहा डॉक्टर, क्यों मजाक करते हैं, जरूर मैंने टिकट खरीदा है, लेकिन इतना भाग्यवान नहीं हूं मैं कि मेरी 1 करोड़। तो उसने कहा, नहीं मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप क्या करोगे। तो फिर वो सोचने लगा, उसने कहा, अगर डॉक्टर ये सच है तो मैं 50 लाख आपको दे दूंगा। वो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। हाँ, ये तो एक इंसिडेंस था, लेकिन जिन माँ बाप को अपने बच्चों की शादी करनी होती है उसके लिए बहुत प्रबंध करने पड़ते हैं, उसमें धन की समस्या हो सकती है, दहेज की समस्या हो सकती है, ससुराल वालों के व्यवहार की समस्या हो सकती है, ऐसी कई बातें हैं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए खुशी के साथ साथ तनाव भी होता है। जिनकी शादी होती है उनके लिए नया वातावरण, नए लोग, नई परिस्थितियां, उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे ही धन की समस्या, आज का जो समय है उसमें हम धन को शक्ति मानते हैं, धन को शक्ति मानते हैं, यानी धन को सब कुछ ही मानते हैं। पहले कहते थे धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज स्थिति उल्टी है, आज हम सोचते हैं धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया ना, तो लोग धन कमाने के लिए जो आज वर्तमान हमारे सामने चित्र है वो इस तरह का है कि लोग धन कमाने के लिए अपने चरित्र की भी परवाह नहीं करते, फिर उससे भी आगे वो अपने मूल्यों की संबंधों की भी परवाह नहीं करते। आज देखो विज्ञान ने जो भी साधन दिए हैं, हम सब चाहते हैं कि वो सब कुछ हमारे पास हो, है तो ठीक है और नहीं है तो लोग गलत तरीके से भी धन कमाने की कोशिश करते हैं। आज समाज में भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है, उसका कारण यही है। और जब गलत तरीके से धन कमाते हैं और फिर कभी धन संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, ये भी देखने में आता है, तो भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, यहां तक कि किन्हीं स्थितियों में लोग अपने संबंधों को खत्म करने में भी देरी नहीं करते हैं। कुछ समय पहले अखबार में एक समाचार छपा था, यहाँ पास में एक शहर है, वहां गांव में किसी किसान ने अपनी जमीन बेची, उसके दो बेटे थे। अब जमीन से उसको 9-10 लाख रुपए मिले, लेकिन उसने अपने बेटों को नहीं दिया और वो बेटे चाहते थे कि हमारे पिता हमको ये पैसा दें, तो पिता ने नहीं दिया, तो दोनों बेटे इतने नाराज हुए कि दोनों ने मिलकर के अपने पिता की ही हत्या कर दी। तो कई स्थितियों में हम देखते हैं यहां तक भी लोग पहुंच जाते हैं। तो धन हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। देखिए, धन से आप किताबें खरीद के ला सकते हैं, आप ज्ञान खरीद सकते हैं, आप धन से बिस्तर खरीद के ला सकते हैं, नींद खरीद सकते हैं, आप धन से दवाइयां खरीद के ला सकते हैं, स्वास्थ्य खरीद सकते हैं, घड़ी खरीद के ला सकते हैं, क्या समय खरीद सकते हैं, नहीं। तो उसकी अपनी सीमा है और इसीलिए जो धन हमें कमाना चाहिए वो सच्चाई और ईमानदारी से कमाना चाहिए, उससे हमारी आवश्यकताएं सहज पूरी होती हैं ना। आवश्यकताओं के लिए हमें बहुत अधिक धन नहीं चाहिए। धन किसके लिए चाहिए व्यक्ति को, बैंक बैलेंस के लिए चाहिए, या एक मकान है उससे संतुष्ट नहीं है, दो मकान चाहिए, एक गाड़ी है उससे संतुष्ट नहीं है, दो गाड़ी चाहिए, ऐसे ही कहेंगे। तो अगर हम चलो करते भी हैं तो भी आप इतने बिस्तर पर सोने वाले हैं, सोएंगे तो एक ही बिस्तर पर, कितने भी घर हों आपके, रहेंगे तो आप एक ही घर में, हाँ कितना भी खाने पीने के लिए आपको उपलब्ध हो फिर भी खाना कितना खाने वाले हैं, जितने में आपका पेट भर जाए, वो दो में या तीन रोटी में, उससे ज्यादा तो पेट को कितना चाहिए। तो कहते हैं इंसान पेट के लिए नहीं कमाता है, आजकल पेटियों के लिए कमाता है ना। तो यदि हम धन में बहुत अधिक चले जाते हैं तो वो धन तनाव पैदा करता है। देखो अधिक धन भी जिनके पास है उसकी सुरक्षा के लिए कितना तनाव, कहीं गवर्नमेंट ना ले जाए तो गवर्नमेंट से बचाओ उसको, फिर गवर्नमेंट से बचाया तो चोरों से भी बचाओ, जो धनवान होते हैं उनके पीछे चोर भी लगे होते हैं, सही कहेंगे, और कम धन है तो भी तनाव होता है। तो धन दोनों तरह से तनाव पैदा करता है, लेकिन अगर हम सच्चाई ईमानदारी से धन कमाते हैं तो ऐसा धन जीवन में सुख शांति लाता है। फिर बच्चों की समस्याएं होती हैं आजकल, अगर बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं, गलत संग में पड़ जाते हैं, जो भाई साहब कह रहे थे जनरेशन गैप है, हाँ वो जिस वातावरण में ज्यादा रहते हैं आपके साथ तो वो समय कम बिताते हैं, लेकिन बाहर उनका समय अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बीतता है, तो उस संघ का असर उनके ऊपर आ जाता है। तो आज की जनरेशन में हम देखते हैं कि वो इंटरनेट में लगे रहते हैं, कंप्यूटर्स में लगे रहते हैं ना, टीवी, वीडियो गेम्स, सिनेमा, जो भी है, अगर वो उसमें अधिक चले जाते हैं और आप चाहते हैं आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई ऊंचे से ऊंचा कैरियर बनाए, और यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो माँ बाप को बहुत तनाव होता है। कई बार बच्चे योग्य हैं तो वो जरूर आपकी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, लेकिन अगर वो योग्य ही नहीं है, योग्य नहीं है, और उसके साथ साथ कई बार ऐसे होता है कि उनकी रुचि भी नहीं है, जो आप चाहते हैं वो करना भी नहीं चाहते वो, उनकी रुचि कहीं और है, तो फिर बच्चों पर दबाव पड़ता है और कई बार फिर से अखबारों में ऐसे समाचार होते हैं कि उसकी वजह से कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। एक लड़के ने सुसाइड किया, यहाँ पर कोटा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, बहुत प्रसिद्ध है वो, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के कंपटीशन एग्जाम देने के लिए आकर पढ़ते हैं, रहते हैं। तो ऐसे ही एक लड़के ने सुसाइड किया और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा, इस साल ही वहाँ काफ़ी सुसाइड हुए, कुछ बच्चों ने किए वहाँ सुसाइड, तो कितना प्रेशर होता है उनके ऊपर। तो उसने लिखा कि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं तो अभी एग्जाम में फेल हो गया हूं और मुझे पता है मैं कितना भी पढ़ लूं मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन मैं अपने माँ बाप को निराश भी नहीं करना चाहता, इतनी आशा रखते हैं वो मुझसे, तो इसीलिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ। तो कई बार बच्चे इतने परिपक्व नहीं होते, वो आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो हमेशा देखिए बच्चे की रुचि क्या है और उस अनुसार ही उनका हम मार्गदर्शन करें, उन्हें जीवन में हम प्रेरणा दें। और यदि आप चाहते हैं कि बच्चे आपका कहना माने, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें, तो बचपन से ही उनको समय दीजिए, उनको अच्छे संस्कार दें। जो आप संस्कार बच्चों को देते हैं, जैसा चरित्र वो आपका देखते हैं, वैसे ही वो अपना जीवन बनाते हैं। तो यदि हमारे ही संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो हम बच्चों में कैसे अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। फिर कार्य क्षेत्र पर भी कुछ समस्याएं पैदा होती हैं, 8 घंटे हम वहां बिताते हैं, हमारे कोई ना कोई अधिकारी होते हैं, हम सारा दिन मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, उसकी प्रशंसा तो नहीं मिलती है, लेकिन कोई काम में थोड़ी गलती हो गई तो उसके लिए 4 लोगों के सामने अपमानित कर दिया जाता है। कोई कोई अधिकारी ऐसे होते हैं, बहुत कठोर स्वभाव के होते हैं, तो फिर तनाव पैदा होता है। कंपीटिंग विद ए कलीग, साथियों के बीच में कंपटीशन होना, ये एक सामान्य सी बात है आज, लेकिन अगर वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है तो हमें उन्नति में मदद करता है, लेकिन अगर वो ईर्ष्या द्वेष पर आधारित है तो फिर ऐसा कंपटीशन हमें नहीं करना चाहिए, उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है। कन्फ्लिक्ट विद कलीग, साथियों के साथ मतभेद हो जाते हैं, उनसे विचार नहीं मिलते, काम उन्हीं के साथ करना है, फिर उनका सहयोग हमें नहीं मिलता है, तो ऐसा वातावरण भी तनाव पैदा करता है। डिमोशन, कई बार प्रमोशन के बदले डिमोशन हो जाता है, लोग चाहते हैं हमारा प्रमोशन हो, लेकिन कोई उनका पिछला रिकॉर्ड ऐसा होता है, कोई ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से उनका पद कम कर दिया जाता है, या कई बार सस्पेंड भी कर देते हैं, नौकरी से थोड़े समय के लिए बिठा देते हैं। तो कहते हैं लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कम्फर्ट्स, क्योंकि उसमें व्यक्ति की बदनामी होती है और वो बदनामी सहन करना उनके लिए इतना सहज नहीं होता है। एक्सेसिव वर्कलोड, बहुत अधिक काम करना पड़ता है, नॉइजी एनवायरनमेंट, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, बहुत ट्रैफिक है, पोल्यूशन है, मशीनों का शोर है जिसका दिमाग पर असर आता है, कई बार बहुत पढ़ लिख जाते हैं लेकिन जैसी नौकरी चाहते हैं वैसी नौकरी नहीं मिलती, तो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, न्यू जॉब के कारण भी कई बार होता है, तो ये सब स्थितियां कार्य क्षेत्र पर पैदा होती हैं। तो रिसर्च स्टडी में देखा गया कि 40% एम्प्लॉयज को जॉब स्ट्रेस था, और जब उनके उस तनाव को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गए, यानी ऐसे कार्यक्रम रखे गए जिससे उनका तनाव कम किया जा सके, तो ये देखा गया कि उनके कंपनसेशन क्लेम में 70% तक कमी आ गई। तनाव के बारे में कुछ भ्रामक धारणाएं हैं। धारणा है कि यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन में हम उन्नति करना चाहते हैं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो बिना तनाव के संभव नहीं है। क्या कहेंगे, सही है या गलत है? जो समझते हैं सही है वो हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत कम। और जो समझते हैं गलत है वो हाथ उठाएं। अच्छा थोड़े से ज्यादा, हाँ ये यहाँ का प्रभाव है, शांति मन का प्रभाव ऐसा हम कहेंगे, नहीं तो सामान्यतः लोग समझते हैं कि बिना तनाव के तो सफलता मिलना संभव ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ चित्र में कि जब हम तनाव में कार्य करते हैं तब हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। वही मैंने कहा ना कि बिना तनाव के तो सफलता हो ही नहीं सकती, ऐसा ही समझते हैं। तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि शुरू में हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है क्योंकि हमारे शरीर में कैटाकोलामिन्स बनते हैं जो हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और हम बेहतर कार्य कर पाते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद ही शरीर में स्टेरॉइड्स बनने लगते हैं और फिर वो हमें थकाते हैं, उससे हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारी कार्य क्षमता कम होने लगती है। तो जब भी हम तनाव में आते हैं, चाहे वो हम सफल होने के लिए आ रहे हैं या किसी समस्या के कारण आ रहे हैं, हमारा शरीर उसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो शरीर को वही नुकसान होता है जो हमेशा तनाव के कारण होता है। और मानो हमने 40 साल तक जो हम चाहते हैं अपने जीवन में वो कार्य किया, हमने सफलता भी प्राप्त की, हम जो पद पाना चाहते थे वो पद पाया, जो धन कमाना चाहते थे वो सब कमाया, लेकिन परिणाम क्या हुआ हमारे स्वास्थ्य पर? अब चेकअप कराएंगे तो कोई ना कोई बीमारी लग चुकी होती है, या तो ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा, नहीं तो डायबिटीज शुरू हो जाएगी, नहीं तो हार्ट की बीमारी शुरू हो जाएगी। और ये सब बीमारियां सिर्फ कंट्रोल होती हैं, इनका कोई क्योर नहीं है। कंट्रोल होती हैं यानी जब तक आप जी रहे हैं तब तक आपको दवाई खाना होगा। तो 40 साल आपने कमा लिया, अब नेक्स्ट जितने भी साल आप जीने वाले हैं क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ रहने के लिए आपको वो धन खर्च करते रहना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल हम तनाव से ही सफल होते हैं, लेकिन जिस मनुष्य में काम की लगन है, उत्साह है, इच्छा शक्ति है, वो भी अपने जीवन में सफल होते हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे शरीर पर बुरा नहीं होता है। एक बार एक कंपनी के सीईओ 35 साल की उम्र में वो कंपनी के सीईओ बने। कम उम्र में सीईओ बनना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ थे तो बहुत विदेश जाना पड़ता था उनको, और हमेशा उन्होंने टेंशन में काम किया। तो सक्सेसफुल थे बहुत लाइफ में, कभी जिंदगी में फेलियर क्या होता है उसका अनुभव ही नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया टूर पर थे और वहां अचानक कंपनी को लॉस हुआ, और जैसा कि उनका स्वभाव ही नहीं था, बहुत टेंशन, उनको पता ही नहीं था कि जो टेंशन में उन्होंने जीवन जिया उसके कारण उनके हार्ट पर असर आ चुका है। कभी कभी उनको दर्द होता था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो हुआ ये कि वहां जब कंपनी को लॉस हुआ तो उस टेंशन के कारण हार्ट पर असर आया और उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अब वो 35 साल में सीईओ बने, उसके बजाय अगर 45 साल की उम्र में सीईओ बनते तो शायद अपने समाज परिवार को ज्यादा दे सकते थे। लेकिन कितना बुरा प्रभाव उनके हृदय पर उस तनाव का आ गया कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ इस बात का। ऐसे कई केसेस आज की सोसाइटी में हम देखते हैं कि लोग यंग एज में ही उनको हार्ट अटैक्स होने लगे हैं। पहले जो बीमारी 60-70 साल की उम्र के बाद होती थी। और ऐसे ही एक धारणा ये है कि परिस्थितियों के कारण, दूसरों के कारण हमें तनाव होता है। एक सर्वे किया गया लोगों के ऊपर, उनसे पूछा गया आपके तनाव का कारण क्या, जैसे हम आपसे पूछ रहे थे, तो 80% लोगों ने कहा दूसरों के कारण। जैसे एक सास थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, उसको पूछा गया आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो उसने क्या जवाब दिया? आप बता सकते हैं? मेरी बहू के कारण, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा नहीं करती है बल्कि और ही मेरा सामना करती है, इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जब बहू को पूछा गया, उसका सिर दर्द रहता था, तो उसको कहा कि उसने कहा मेरी सास के कारण मेरे हर काम में गलती निकालती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे सिरदर्द हो जाता है। ऐसे ही वर्क प्लेस पर मैनेजमेंट को पूछा गया, आपको क्यों स्ट्रेस होता है? तो उन्होंने कहा, वर्कर्स के कारण। हाँ, यही कहेंगे ना, वर्कर्स काम नहीं करते हैं लेकिन उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती हैं, अधिक वेतन चाहिए उनको, अधिक सुविधाएं चाहिए, और नहीं दो तो हड़ताल बना करते हैं, यूनियन बनाते हैं। आपको पता नहीं है लोगों से काम कराना कितना मुश्किल है। और जब वर्कर्स को पूछा गया तो वो क्या कहेंगे, मैनेजमेंट के कारण हमें टेंशन होती है, मैनेजमेंट काम तो बहुत लेती है लेकिन जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो सुविधाएं, वेतन नहीं मिलता है। माता पिता को पूछेंगे तो बच्चों के कारण, और बच्चों को पूछेंगे तो माँ बाप के कारण। तो हर एक की उंगली किसकी ओर है? दूसरे की ओर है। तो अगर हम एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं तो तीन उंगली हमारे खुद की ओर है, यानी एक कमी सामने वाले में है। तो पहले तीन कमी किसमें है? किसमें है? हम क्या सोचते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं जो सोच रही हूं या सोच रहा हूं, मैं जो कर रही हूं वो सही है, इनको बदल जाना चाहिए। सास कभी नहीं सोचेगी मुझे बदलना चाहिए, माता पिता कभी नहीं सोचेंगे हमें बदलना चाहिए। कौन बदलना चाहिए? बहू बदलनी चाहिए, बच्चे बदलने चाहिए। और बच्चे क्या सोचेंगे, और या बहू क्या सोचेगी, मेरी सास को समझना चाहिए आज का जमाना क्या है। हाँ, या माँ बाप को समझना चाहिए आज का जमाना क्या, जो अभी हम सुन रहे थे। तो हम हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, ना वो बदलते हैं ना हम बदलते हैं, हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। लेकिन आध्यात्मिकता क्या सिखाती है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यही सीख रहे हैं आप दो दिन से, कि हम बदलेंगे तो ही हम दूसरों को परिवर्तन की प्रेरणा दे सकते हैं। एक बार एक पति पत्नी ट्रांसफर होकर के दूसरे शहर में गए, वहां उन्होंने एक अपार्टमेंट में फ्लैट लिया, और फ्लैट आमने सामने होते हैं कई अपार्टमेंट्स में, ऐसे ही उनका फ्लैट भी था। तो वो सुबह बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे और सामने वाले फ्लैट की जो महिला है वो कपड़े सुखा रही थी। तो ये बहन ने देखा, उसको कमेंट करने की आदत थी, तो उसने उसके कपड़ों को देख के बोला, देखो इसने कैसे कपड़े धोए हैं, है ना, उसको ठीक नहीं लगे कपड़े धुले हुए, तो उसने ऐसे ही बोला। तो पति ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। फिर दूसरे दिन भी जब वो चाय पी रहे थे तभी भी वो अपने कपड़े सुखा रही थी, तो देखा आज भी कपड़े साफ नहीं धुले हुए हैं। फिर उसने कमेंट किया, लगता है इसके पास अच्छी क्वालिटी का सर्फ नहीं है, मतलब कुछ कहना है ऐसे। तीसरे दिन भी जब वो कपड़े सुखा रही थी, ये चाय पी रहे थे, और आज उसने देखा कि कपड़े तो साफ धुले हुए हैं, तो भी उसने बोला आज तो इसने बहुत साफ कपड़े धोए हैं। तो पति ने हंसते हुए कहा कि आज मैंने बालकनी का शीशा साफ कर दिया है। तो अब कमी कहाँ थी और दिखाई कहाँ दे रही थी। तो हम भी अपने जीवन में ज्यादातर कहाँ देखते रहते हैं, दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, अपनी तरफ हम नहीं देख पाते हैं। फिर काम से तनाव होता है, लोग बाहर कार्य करने जाते हैं या घर में काम करते हैं तो कहते हैं बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, इसके कारण हमें तनाव होता है। वास्तव में व्यक्ति को काम से तनाव नहीं होता, लेकिन किस भावना से हम काम करते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम अपने काम को पसंद करते हैं, दिल से करते हैं, रुचि से करते हैं, तो वो काम हमें खुशी देता है। हम घंटों तक भी वो काम करेंगे, वो काम से हमें तनाव नहीं होगा। लेकिन जो काम हम पसंद नहीं करते लेकिन हमसे कराया जाता है या मजबूरी से हमें करना पड़ता है, ऐसा काम हमें जल्दी तनाव पैदा करता है। तो यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो हमें पसंद है, और यदि नहीं पसंद है और हम छोड़ सकते हैं तो हमें वो काम छोड़ देना चाहिए। पर हमेशा ये हमारे हाथ में नहीं होता है, और अगर हम नहीं छोड़ सकते देन लर्न टू लव योर वर्क। जो भी काम हम कर रहे हैं हमें करना ही है, तो उसे हम प्रेम से करना सीख लें तो फिर वही काम हमें खुशी देने लगेगा। नहीं तो हम कुछ काम को व्यवस्थित रूप से भी कर सकते हैं। मानो हमें बहुत अधिक काम है तो हमें लगता है जो अर्जेंट काम है उसे हम पहले कर लें, जो कम अर्जेंट है उसे हम बाद में करें, जो लीस्ट अर्जेंट है उसे हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। या हम किसी का सहयोग लेकर के भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। कई बार कई कॉरपोरेट्स, जो बिजनेस कॉरपोरेट्स होते हैं, वो अपने प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को डेडलाइंस देते हैं, यानी एक समय सीमा दे देते हैं, उस समय सीमा के अंदर वो प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। अगर वो समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो फिर कंपनी को लॉस हो सकता है, इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर जरूर होता है, लेकिन उसमें लाभ होता है। एक बार ऐसे ही एक बिजनेसमैन थे, उनको कोई वारिस नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि ये समय है कि मुझे अपना वारिस कोई तलाश लेना चाहिए। तो वो जैसे गुण अपने वारिस में देखना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया न्यूज़पेपर में कि मेरे घर के बाहर जो स्विमिंग पूल है उसे जो तैरकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक निकलेगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा और वो मेरी कंपनी में पार्टनर भी होगा। बहुत सहज थी शर्त, तो कोई मुश्किल नहीं थी, बहुत सारे लोग पहुंच गए, लेकिन जो स्विमिंग पूल था वो सांपों से भरा हुआ था। अब उसको देख करके किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसमें कूदे और एक कोने से दूसरे कोने पर बाहर निकले। इतने में ही एक युवक कूदा और वो बहुत मुश्किल से सांपों से बचते हुए किसी तरह से दूसरे किनारे पर निकलकर आ गया। बिजनेसमैन वहीं खड़े थे, उन्होंने उसको शाबाशी दी, कहा बेटा मैं जैसा अपनी कंपनी के लिए पार्टनर चाहता था तुम बिल्कुल उसके योग्य हो, इतने साहसी हो तुम, तो तुमको 5 लाख का इनाम भी मिलेगा और तुम मेरे कंपनी में पार्टनरशिप में भी रहोगे। तो उसने कहा कि मुझे ना आपके 5 लाख चाहिए और ना मुझे आपकी कंपनी की पार्टनरशिप चाहिए, पहले मुझे उसको ढूंढने दो जिसने मुझे इस पूल में धक्का दिया है। अब वो धक्का था तो मुश्किल वाला, लेकिन उसने क्या कर दिया, मैं उसको लाभ दिया ना। तो ऐसे ही जीवन में कई बार थोड़ा प्रेशर होता है यदि हमें, तो वो हमारी एकाग्रता को, कार्य क्षमता को कई बार बढ़ा देता है। इसीलिए कंपनियां जो हैं वो डेडलाइंस रखती हैं, समय सीमा रखती हैं, पर उसे हम सकारात्मक लें। अब अपने तनाव को कम करने के लिए हम क्या उपाय अपनाते हैं, हम क्या प्रयास करते हैं? ज्यादातर हम मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं और हमारे मनोरंजन के साधन हैं, हम पार्टी में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाकर बाहर खाना खाएंगे, या क्लब्स में जाएंगे, या फिर हॉलीडेज पर चले जाएंगे बाहर। लोग कोई सिनेमा देखते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ ड्रग्स भी लेते हैं, हर एक के अपने अपने तरीके हैं। कोई पॉजिटिव तरीके भी अपनाते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं लेकिन कम, मनोरंजन ज्यादा करते हैं। तो जितना हम ये साधन प्रयोग करते हैं उस समय तब तक तो हमें लगता है हमारा तनाव बिल्कुल कम हो गया, हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए, लेकिन जैसे ही वो परिस्थिति फिर से सामने आती है फिर से हमें तनाव महसूस होने लगता है। यानी क्या हुआ, हमारा तनाव पोस्टपोन हो गया। हमने मनोरंजन किया तब तक तनाव समाप्त, मनोरंजन समाप्त तो तनाव शुरू, ये स्थिति हो जाती है। तो हमें ये समझना होगा कि तनाव का मूल कारण क्या है। मूल कारण हमारे सोचने के तरीके में है। किसी भी परिस्थिति में हम किस दिशा में सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, और ज्यादातर हम तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचना आसान होता है। हम सोचते हैं इसमें मेरा बुरा क्या हो सकता है, इसमें मेरी हानि क्या हो सकती है, अनिष्ट क्या हो सकता है, वो हम ज्यादा सोचते हैं। इसमें मेरा लाभ क्या हो सकता है वो नहीं सोचते, जबकि हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उसमें मेरी कुछ हानि हो रही है तो कुछ मेरा लाभ भी होता है। मानो आप ऑफिस में हैं और दो लोगों से गलती होती है, अधिकारी बुलाते हैं, एक व्यक्ति जो आता है वो मानता है, जब सुनता है अपनी गलती को तो वो मान लेता है कि ये मेरी गलती है और वो सॉरी बोलता है और फिर कहता है आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बात वहीं खत्म हो जाती है, अधिकारी भी संतुष्ट होते हैं, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आता है वो अपनी गलती नहीं मानता है और ये सिद्ध करने लगता है मैंने कोई गलती नहीं की, इसके कारण ऐसा हुआ उसके कारण, और दूसरों को भी शामिल करता है, यहाँ तक कि अधिकारी को भी कह देता है। तो अधिकारी नाराज होते हैं। अब टेंशन कितने दिन तक चलेगा वो निर्भर करता है फिर से दोनों की आपसी समझ कब ठीक होती है। तो परिस्थिति एक ही है लेकिन दोनों का उसके प्रति सोचने का तरीका अलग अलग। तो एक ने तनाव अनुभव किया और दूसरे ने सहज ही उस परिस्थिति को पार कर लिया। आप सड़क पर जा रहे हैं और किसी ने, आप गाड़ी में हैं और किसी ने आपकी गाड़ी को लगा दिया। अब या तो हम सीधे सीधे निकल जाएंगे, हम देखेंगे ट्रैफिक है कोई बात नहीं लग गया आगे से गाड़ी ध्यान से चलाएंगे, हाँ दूसरों से भी अपने आप को बचाएंगे ऐसा सोच के निकल गए, और नहीं तो हाँ कोई एक होता है बाहर निकल के गाड़ी से और गालियां देने लगता है, उसका भी गला पकड़ लेता है तुमने ऐसा क्यों किया। परिस्थिति पैदा हुई लेकिन मेरा रिस्पॉन्स कैसा है, आप समझ रहे हैं ना। एक जैसी परिस्थिति दो चार लोगों के सामने आती है लेकिन हरेक का सोचने का तरीका अलग, रिएक्शन अलग हो जाती है। ऐसे ही एक परिवार में जर्नलिस्ट थे, फैमिली में वो जर्नलिस्ट थे और उन्होंने अपने पूरे साल की रिपोर्ट लिखी, पिछले साल की रिपोर्ट लिखी, और उन्होंने लिखा कि मेरा पिछला साल बहुत बुरा था। अब क्यों बुरा था वो लिखा उन्होंने कि मेरा ऑपरेशन हुआ जिसके कारण मुझे कई दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उसका साल खराब हो गया, फिर लिखा कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर लिखा कि मैं रिटायर हो गया। अब वो टेबल पर कागज पड़ा था, उनकी पत्नी आई, उन्होंने पढ़ा ये सारा और उन्होंने पन्ना पलटा और लिखा कि बीता साल हमारे ऊपर भगवान की कृपा रही। अब क्या कृपा रही, वही बात में उसने लिखा, मेरे पति का ऑपरेशन हुआ, वो कई दिनों से दर्द में थे और ऑपरेशन के बाद उन्हें सदा के लिए दर्द से मुक्ति मिल गई। फिर उसने लिखा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ, उसके कारण उसे कई महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा, उसका साल खराब हुआ, लेकिन मैं भगवान का धन्यवाद करूंगी कि उसे नया जीवन मिला। फिर उसने लिखा, मेरे ससुर 90 साल की उम्र में बिना किसी लंबी बीमारी के सहज मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर चौथी बात उसने लिखी कि मेरे पति अब रिटायर हो गए हैं, वो बहुत समय से कुछ पुस्तकें लिखना चाहते थे क्योंकि जर्नलिस्ट थे वो, लेकिन उनको समय नहीं मिलता था, लेकिन अब उन्हें समय मिलेगा और वो पुस्तकें लिखने का कार्य वो कर सकेंगे। अब देखिए एक ही जैसी बातें हैं लेकिन दोनों का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग अलग। उसको बहुत बुरा लग रहा है और उसको लग रहा है कि भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की। तो किसी भी घटना को, परिस्थिति को हम किस तरह से सोच रहे हैं वो उस पर निर्भर करेगा मुझे तनाव होगा या नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मन है ना, जैसे हम बात करें मन सूक्ष्म है और मन की गति बहुत तेज है, इसीलिए जितना ये कहना आसान है कि किसी भी परिस्थिति में हम आशावादी रहें, सकारात्मक रहें, अपने विचारों को सही दिशा में रखें, उतना करना आसान नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होगा, उसके लिए कोई ना कोई प्रयास करना होगा, और वो प्रयास क्या है, वो मेडिटेशन है। और मेडिटेशन आप सीख रहे हैं यहां पर, मेडिटेशन में दो चरण हैं। आपने सुना स्ट्रेस हमें तब होता है जब प्रेशर्स हमारे ऊपर ज्यादा हैं और उसकी तुलना में कोपिंग एबिलिटी हमारी कम है। तो तनाव कम करने के लिए या तो हम प्रेशर्स कम करें, हमारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, हो सकता है, हो सकता है, कहिए, हो सकता है जीवन में कोई समस्या ही ना आए, हाँ, जीवन बहुत सुख से बीत रही होती है, पता नहीं कहाँ से कौन सी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हमें उसका वो सहन करना है या उसका सामना करना है या उसको समाना है। उसके लिए आंतरिक शक्ति चाहिए। तो हम अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अपनी आंतरिक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। योग अभ्यास से हमें वो शक्तियां मिलती हैं। हम दो चरणों में योग अभ्यास करते हैं, पहला है आत्मचिंतन और दूसरा है परमात्म चिंतन। आपने सीख लिया है कैसे हमें योग करना है, तो हम आत्मचिंतन करते हैं, उस समय हम आत्मा के गुणों का अनुभव करते हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो हमें समझ में आता है मेरी समस्या कहाँ है और उसका समाधान कैसे हो सकता है, और वहीं हमारा आधा तनाव कम हो जाता है जब हमारा आत्मनिरीक्षण होता है। क्योंकि नॉर्मली हम बाह्य मुखी होते हैं, जैसे हमने बात किया, हम दूसरों को देखते हैं, अपने आप को हम देखते ही नहीं हैं। लेकिन योग में हम क्या करते हैं, अपने आप को देखना प्रारंभ करते हैं, और जैसे ही हम अपने आप को देखते हैं हमें समझ में आ जाता है मुझे अपने में कहाँ परिवर्तन लाना है। और दूसरा चरण परमात्मा से जब हम संबंध का अनुभव करते हैं, वो सर्वशक्तिवान है, शांति के सागर हैं, उससे मन को शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है और हमें बड़ी बात भी छोटी लगती है। जब हमारा मनोबल ऊंचा होता है तब हमें बातें बड़ी नहीं लगती हैं, हम उसे सहज पार कर लेते हैं। जब मन कमजोर होता है तब हमें छोटी बात भी बड़ी लगती है। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो आपका मन हार रहा है वो उस पर निर्भर करेगा कि आप तनाव का अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हुए हैं इस संसार में, चाहे वो महात्मा बुद्ध हुए, क्राइस्ट हुए, महात्मा गांधी हुए, मदर टेरेसा हुई, सुकरात हुए, बहुत कठिनाइयां आई हैं उनके जीवन में। कोई भी महान बिना कठिनाइयों के, बिना समस्याओं के बना ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सहज रीति से उन्हें पार किया। महात्मा सुकरात के जीवन की घटना है, ऐसे तो सभी के जीवन के बहुत प्रसंग हैं, लेकिन सुनाने के हिसाब से एक बार सुकरात अपने शिष्यों के साथ बैठ करके कुछ चर्चा कर रहे थे और उनकी पत्नी भोजन के लिए इंतजार कर रही थी और वो बहुत गुस्से वाले स्वभाव की थी, ये सुकरात जानते थे। लेकिन जब वो चर्चा में बहुत देर हो गई और पत्नी ने देखा कि सुकरात समाप्त नहीं कर रहे हैं, तो गुस्से में आकर के उसने, जो उसकी भाषा थी उस भाषा में उसने गालियां देना शुरू कर दिया। तो उनके शिष्यों ने सुना तो उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारे गुरु का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने इशारा किया कि हम इसको चुप कराते हैं। तो गुरु ने कहा नहीं, क्योंकि वो जानते थे। जब और थोड़ा समय गुजर गया तो वो गुस्सा इतना बढ़ गया उसका, कहते हैं क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है ना, तो वो पानी का घड़ा जो रसोई में भरा हुआ था वो उसने उठाया और जहां सुकरात बैठे थे वहां लाकर उनके सिर पर पूरा उंडेल दिया। तो सुकरात हंसने लगे, उन्होंने कहा कि आज तक हम सुनते थे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, आज तो देखा जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। अब देखिए इतना अपमान कर दिया उसने उनके शिष्यों के सामने, लेकिन उन्होंने उसको हंसी में बदल दिया। तो ये आंतरिक शक्ति है कि हम कैसे किसी भी परिस्थिति में व्यवहार करेंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये हो सकता है ऐसे नॉर्मली कोई हमारे साथ करता है तो हम क्या करते हैं। तो इस तरह से योग अभ्यास से हमारी वो शक्तियां बढ़ जाती हैं। और ये भी अध्ययन किया गया, कई साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर, कि जब हम योग अभ्यास करते हैं तब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं जो लाभदायक हैं। तनाव में जो केमिकल्स बनते हैं वो हानिकारक हैं, उससे रोग पैदा होते हैं, लेकिन योग अभ्यास के समय जो शरीर में केमिकल्स बनते हैं वो हमारे रोग को समाप्त करते हैं, हमें स्वास्थ्य लाभ देते हैं। वो एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स, सेरोटोनिन्स कहलाते हैं और उनसे हार्ट रेट कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारा रेस्पिरेशन कम होता है, मेटाबॉलिज्म कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, यानी सभी अंग एक संतुलन में काम करते हैं और हम स्वस्थ होते हैं। और इसीलिए योग आज बहुत महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि योग करना चाहिए, रोज अपने लिए समय निकालें, रिलैक्स करें अपने आप को। फिर चाहे हमारा वर्क प्लेस का जीवन है, चाहे हमारी फैमिली लाइफ है, या हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, ये तीन बातें हमारे सामने आती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप्स। हम सभी कोई ना कोई कार्य करते हैं और उस कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मानो आप ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिसर हैं, 8 घंटा हम ऑफिशियल रहते हैं क्योंकि हमें लोगों से काम कराना है। लेकिन जब हम घर लौट कर आते हैं तो हमारा रोल चेंज हो जाता है। घर में तो हम ऑफिसर नहीं हैं, घर में आप पिता हैं, पति हैं, पुत्र हैं, जो भी जिस संबंध में हैं, दोस्तों के साथ दोस्त हैं। लेकिन अगर हम अपने रोल से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते तो फिर जहां हमारा जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले नहीं कर पाते। घर में भी यदि हम ऑफिशियल रहेंगे, ऑफिसर जैसा व्यवहार करेंगे, तो क्या हमारे परिवार को वो व्यवहार पसंद आएगा? उन्हें आपसे स्नेह चाहिए, अपनापन चाहिए, सहयोग चाहिए। मानो अफसर नहीं है, वर्कर हैं, काम करते हैं, लोग हमसे काम कराते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं, अब हम पलट कर जवाब नहीं दे सकते, चुप रहते हैं, गुस्सा पी जाते हैं। घर लौटते हैं, यहाँ भी ऐसे ही होता है, अब गुस्सा किस पर निकालते हैं? वहां तो नहीं निकाल सकते, लेकिन किस पर निकालते हैं? फिर घर में जो सदस्य सामने आएगा उसके सामने गुस्सा निकालेंगे। ऑफिस का टेंशन हम घर में लेकर आ रहे हैं, कई बार घर का टेंशन ऑफिस में लेकर के जाते हैं, ना इधर रिलैक्स है ना उधर रिलैक्स है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपने सीखा कि मैं जो रोल प्ले कर रही हूँ वो मैं नहीं हूँ। हम अपनी पहचान रखते हैं, हम जो कर रहे हैं वो हैं, वी आर ह्यूमन डूइंग्स नॉट ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन ये तो हमें संसार में कार्य करने के लिए मिला है, मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर के माध्यम से ये कर्म कर रही हूँ, ये सत्यता है। तो जब हम इसको रियलाइज करते हैं तो फिर कोई भी कार्य हम करते हैं उससे अपने आप को नियारा करना और जहां मेरा जो रोल है उस रोल को प्ले करना हमारे लिए आसान हो जाता है। रूटीन्स, हमारी दिनचर्या, आज सारा दिन हम व्यस्त रहते हैं, सुबह से शाम तक काफी कार्य करना होता है और रात को जब घर लौटते हैं तो रिलैक्स होना चाहते हैं। क्या करते हैं रिलैक्स होने के लिए? क्या करते हैं? टीवी देखते हैं ना, तो टीवी में देखते हैं तो कई भाई बहने हमको कहते हैं, बहन जी हम समाचार देखते हैं। अब आप समाचार देखते हैं और आज के समाचार कैसे होते हैं? जैसे बताया, सबसे बुरी खबर मीडिया की सबसे अच्छी खबर होती है और वो मैंने 10 बार देख ली। अब क्या होगा, मेरा तनाव कम होगा या बढ़ जाएगा? आप कोई स्पोर्ट्स देख रहे हैं, आपकी मनपसंद टीम जीत रही है तो ठीक, और अगर हार रही है तो उसके साथ ही हम भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। बहनें क्या देखती हैं? सीरियल। हाँ, आप सीरियल जो देखते हैं क्या उनसे स्वस्थ मनोरंजन होता है आपका? हाँ, और ही मन की भावनाएं दूषित हो जाती हैं, है ना? और जो टीवी के सामने बैठे हैं वो देर रात तक नहीं सोते हैं। आप देर से सोएंगे तो सुबह कितने बजे उठने वाले हैं? 8 बजे से पहले नहीं उठेंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये कहावत है हमारे पुराने समय की। लेकिन लेट टू बेड लेट टू राइज क्या होने वाला है? हरी वरी एंड करी। हाँ, हम समझ सकते हैं, जल्दबाजी में अब मुझे टाइम पर ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, कम समय में सारे काम मुझे पूरे करने हैं, क्या होगा? दिन ही तनाव से शुरू होता है। फिर हम देखते हैं बहुत सारा काम करना है, एक साथ कई काम करने लग जाते हैं, एक भी काम सही ढंग से पूरा नहीं करते। सही तरीका होता है कि जो काम हाथ में लिया है उसे हम पहले पूरा करें, उसके बाद फिर दूसरा काम हम शुरू करें। तो समय से सोना, समय से उठना, समय से भोजन करना, समय से अपना कार्य समाप्त करना। कई बार लोग इसके विपरीत होते हैं, आलसी होते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। तो काम पर जाएंगे तो अपना टाइम पास करेंगे, कॉफी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, गपशप करेंगे, और जब समय पूरा हो जाता है तब देखा कि काम हुआ ही नहीं। एक बार ऐसे ही एक ठेले वाला हॉकर, वो फल बेचता था। एक बिजनेसमैन आए उनके पास, उनको फल चाहिए था, तो उन्होंने देखा कि ये सो रहा है। तो उसने उसको बोला, बिजनेसमैन ने, कि तुम बिजनेस कर रहे हो या ऊंग रहे हो? उसने कहा कि आपको क्या है, जैसे हम कहते हैं ना, भाई आपको क्या लेना देना है। तो उसने यही पूछा सवाल कि आपको क्या है। उसने कहा, देखो तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा कमाओगे, और फिर तुमको ये ठेला नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हारी अपनी दुकान हो जाएगी। उसने कहा, फिर क्या होगा? उसने कहा, तुम्हारी अपनी दुकान होगी, फिर तुम और अच्छा कमाओगे, फिर तुम अपना घर बना लोगे। उसने कहा, फिर क्या होगा? उसने कहा, घर में तुम सुख चैन से रहोगे, सुख चैन की नींद सोओगे। उसने कहा, वो तो मैं अभी भी सो रहा हूं। तो तनाव मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम आलसी हो जाएं, जितना हो जाता है उतना कर लेते नहीं, लेकिन अपनी दिनचर्या में हम एक्टिव, एक्यूरेट, अलर्ट रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें। वो तब संभव है जब हम व्यवस्थित रूप से अपनी दिनचर्या को चलाते हैं। विश्व संबंध, हम सभी संबंधों में रहते हैं, समाज में रहते हैं, फिर चाहे वो परिवार में है, चाहे हम अपने वर्क प्लेस में हैं, संबंध तो है ही। तो संबंधों में वास्तव में अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो वो हमारे तनाव को कम करते हैं, क्योंकि संबंधों में हम अपना सुख दुख बांट लेते हैं। तो कहते हैं, दुख बांटने से आधा हो जाता है और सुख बांटने से बढ़ जाता है। मुझे कोई परेशानी है और जिनसे हम समीप हैं, विश्वास करते हैं, उनसे मैंने अपने दिल की बात कही, तो वो आपको सहयोग देते हैं, हिम्मत बंधाते हैं, और उससे आपका मन हल्का हो जाता है। ये देखा गया विदेशों में, जो लोग पालतू जानवर रखते हैं, वहाँ पर पेट्स रखने का बहुत रिवाज है, क्योंकि वहाँ लोग परिवारों में कम रहते हैं, तो हर घर में कुत्ता या बिल्ली, कोई ना कोई पेट होता है। भारत में इतना रिवाज नहीं है, क्योंकि यहाँ परिवार का सिस्टम ज्यादा है। तो ये देखा गया कि जो अपने पालतू जानवर से बात करते हैं, उनको हार्ट की बीमारी बहुत कम होती, एक स्टडी की गई। तो फिर उनसे पूछा गया कि आपके दोस्त हैं, आपके बच्चे हैं, उनसे बातें करिए, आप इन जानवरों से क्यों बात करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये चुपचाप सुनते हैं, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। हम किसी मनुष्य से बात करेंगे तो हमें उसका भी सुनना पड़ेगा, हम सिर्फ सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। तो आज ये भी स्थिति है कि हम सुनाते हैं लेकिन सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आज समय कितना कम है, सारा दिन काम में निकल जाता है, कुछ समय टीवी के सामने निकल जाता है, थोड़ा बहुत जो बचा वो मोबाइल में निकल जाता है, हाँ जो भी कहो, हाँ, लेकिन आपस में एक दूसरे के लिए कितना कम समय होता है कि हम किसी की बात सुन पाए या उसको दे पाए। लेकिन फिर भी आप यहाँ राजयोग सीख रहे हैं, तो राजयोग में ईश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो बहुत ही साइलेंट और फेथफुल लिसनर है। भगवान से हम अपने दिल की कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी समस्या हम उनके सामने रख सकते हैं, और उससे हमें वो शक्ति भी मिलेगी कि हम उस समस्या को पार कर पाए। आप सीख रहे हैं, मैं बहुत विस्तार से इस पर बात नहीं करूंगी, आने वाले कल का दिन और है आपके पास, आप और भी सीखेंगे इसमें। लेकिन फिर भी संबंधों में कुछ नकारात्मक बातें जो आ जाती हैं, जो तनाव पैदा करती हैं, उसमें है एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं, जो हमारी एक बहन ने भी कहा, बहुत अपेक्षाएं रखते हैं हम समीप संबंधों में। जैसे पति पत्नी से सोचेंगे, इसको ये सब करना ही चाहिए, इसका फर्ज है, वो करती रहती है तो ठीक, और कहीं थोड़ा कम ज्यादा हो गया तो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, टेंशन होता है। ऐसे ही पत्नी अपने पति से जो अपेक्षाएं रखती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो बच्चों से अपेक्षाएं रखते हैं, मेरा बच्चा है, मेरी बात नहीं मानता, मुझे बहुत दुख होता है, वही बात मैंने किसी दूसरे के बच्चे को कही, उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है। तो जहां मेरापन है वहां अगर हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही तो व्यक्ति को तनाव होता है, दुख होता है। एक बार एक भाई हमारे पास आए, उन्होंने कहा बहन जी मुझे हार्ट अटैक हुआ है और उसका कारण भी मुझे पता है। मेरे माता पिता उनका बचपन में देहांत हो गया, मेरे 3 छोटे भाई बहन थे, उनकी परवरिश की मैंने, उन्हें योग्य बनाया, आज वो सब बहुत अच्छा कमाते हैं। अब स्थिति ये है कि मुझे उनके सहयोग की जरूरत है और वो मुझे सहयोग देना तो दूर, मेरा एहसान भी नहीं मानते कि मैंने उनके लिए कुछ किया हो। मुझे बहुत दुख होता है और डॉक्टर कहता है सोचो मत, आप सोचेंगे तो दोबारा हार्ट अटैक हो जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ, हम कहेंगे सोचना नहीं चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा समय आएगा तो ये भी जरूर हमारे लिए करेंगे, और नहीं करते तो। लेकिन गीता हमें क्या सिखाती है, हाँ, जो राजयोग भी सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का हम पालन करें। यदि उसका प्रतिफल हमें मिलता है तो भी बहुत अच्छा, और नहीं मिलता है तो भी बहुत अच्छा। ये जीवन जीने की कला है, और संबंधों में यदि हम इस भाव से रहते हैं तो फिर हमें तनाव नहीं होता। हाँ, फिर हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, टाइम पूरा हो रहा है तो मैं इसे पूरा करती हूँ। एक कल आपका मॉर्निंग सेशन भी है, उसमें हम विस्तार से फिर बात करेंगे। 3 A's का फॉर्मूला हम अपनाएंगे तो भी हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। एक्सेप्ट, ऑल्टर एंड अवॉइड। कुछ बातें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं जीवन में, आप जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। मानो हम परिवार में रहते हैं और हमारे जो साथी हैं, सदस्य हैं, उनका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं है, हम जैसा चाहते हैं वैसा वो नहीं करते हैं, हम उनको समझा भी चुके हैं और हमें पता है कि हम दूसरों को नहीं बदल सकते, तो फिर हमें उनको स्वीकार करना होगा। वो जो हैं जैसे हैं उनको स्वीकार कर लीजिए और उनको समझ कर चलिए, तो उनके व्यवहार से आपको टेंशन नहीं होगा। चाहे वो आपके ऑफिस में हैं, चाहे वो आपके फैमिली में हैं, लेकिन कुछ बातों में हम स्वयं में परिवर्तन ला सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। मानो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरा बहुत सेंसिटिव नेचर है, या मुझ में अहम भाव आ जाता है, मुझ में ईर्ष्या हो जाती है, हम अपनी कमी समझ पाते हैं तो अपनी कमी को हम दूर कर सकते हैं। हो सकता है उसमें हमें कुछ मेहनत करनी पड़े, कुछ समय भी हमें लगे, लेकिन स्वयं में हम परिवर्तन लाएंगे तो हमारी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। कुछ बातों को जीवन में हमें अवॉइड करना पड़ता है। आज हम देखते हैं पूरी दुनिया एक विलेज की तरह है, क्योंकि संसार के दूसरे कोने में क्या हो रहा है, मेरे घर के ड्राइंग रूम में वो 1 मिनट में पहुंच जाता है। अब हम घर बैठे तो कुछ नहीं कर सकते, कई ऐसी स्थितियां होती हैं जो हम सुनते हैं और मेरे मन पर उसका असर होता है। तो यदि हम कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उसका प्रभाव यदि मेरे ऊपर पड़ता है तो हम नहीं सुने, और नहीं तो साक्षी भाव से सुने, यानी सुनते हुए भी जैसे मैंने नहीं सुना उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, देखते हुए भी मैंने। कईयों की बातें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो वहां हमें साक्षी हो जाना है कि हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है, वो प्ले कर रहे हैं संसार में ऐसी घटनाएं। ये संसार एक विशाल रंगमंच है, इस पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे पिक्चर में कोई विलन का रोल कर रहा है, किसी को शूट कर रहा है, हमारे पर क्या असर होता है, हम सोचते हैं ड्रामा है, हाँ ये ड्रामा में ये सीन तो होंगे ही। तो इस तरह से यदि हम उसको अवॉइड कर पाते हैं तो फिर हम काफी हद तक तनाव मुक्त, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जीने का अनुभव कर सकते हैं। 2 पंक्तियों के साथ मैं समाप्त करूंगी। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तो मुस्कुराए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ओम शांति।